हरे कृष्णा। तो इस गौर पूर्णिमा के महोत्सव के लिए आप सबका यहाँ स्वागत है। जगह जगह से भक्त आए हैं, बेलगाम के बाहर से भी आप कई भक्त आए हैं, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं। आप सबको व्यक्तिगत रूप से नाम से नहीं स्वागत कर सकते, क्षमा कीजिए, परंतु एक विशेष अतिथि हमारे बीच में आए हैं, उनका स्वागत हम अवश्य करना चाहेंगे। बंबई से श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य यहाँ पर आए हैं, जो कई साल से संस्था में बड़े अच्छी तरह से सेवा करते आए हैं। वो हैं श्रीमान पूर्ण प्रज्ञ प्रभु, और वो हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं। अचानक आज यहाँ पर आए तो उनके संग को प्राप्त करके हम सब बड़े आनंदित हैं। आशा करते हैं कि वो ऐसे बार बार यहाँ पर आएंगे। हम आभारी हैं कि उन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ पे उनका संग हमें देने के कष्ट किया है। तो आइए उनका स्वागत हम करते हैं तीन बार हरि बोल कह के।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
भगवान श्री कृष्ण तो भगवद गीता में घोषणा करते हैं कि वो हर युग में प्रकट होते हैं। ये श्लोक आप जानते हैं, कौन सा श्लोक है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्यत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि हर युग में मैं प्रकट होता हूं। जब भी धर्म की ग्लानी होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं प्रकट होता हूं। और प्रकट होकर भगवान क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करते हैं। संभवामि युगे युगे, इस हेतु वह युग युग में इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। भगवान के अनंत अवतार हैं। समय समय पर ये अलग अलग अवतार यहां पे धरातल पे प्रकट होते हैं, और केवल पृथ्वी लोक पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों में प्रकट होते हैं। स्वर्ग लोक में हो, महरलोक जनलोक में हो, जहां भी हो। लेकिन हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस पृथ्वी लोक के ऊपर भगवान ने कितने सारे अवतार लिए, और खास करके ये भारत वर्ष की भूमि जो है ये विशेष करके पावन है, क्योंकि यहां पर कितने सारे अवतार प्रकट हुए भगवान के। तो भगवान ने तो कह दिया है गीता में कि इन तीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं यहां आता हूं, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म की संस्थापना करने के लिए। अब मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, प्रेमा पुमार्थो महान। सबसे ऊंचा जो उद्देश्य मनुष्य के लिए होना चाहिए वो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और धर्म का पालन करने से अवश्य इस प्रेम को हम धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं, परंतु बहुत समय लगता है। जब इतने सारे अवतार प्रकट हुए थे यहां पर पृथ्वी लोक पर, ऐसे कोई अवतार नहीं है जिन्होंने कहा कि मैं खास करके भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए आया हूं। नरसिंह देव जब प्रकट हुए प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, प्रभु रामचंद्र जब प्रकट हुए तो रावण का वध करने के लिए और पृथ्वी लोक पर धर्म की संस्थापना करने के लिए, आदर्श मनुष्य क्या होता है ये दिखाने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम, इस तरह से अनेक अवतार हुए। और इन अनेक अवतारों के अनेक भक्त भी हुए। लेकिन ऐसे भिन्न भिन्न अवतारों में कभी ऐसे घोषणा नहीं की कि मेरा अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य है कि सबको शुद्ध भगवत प्रेम बांटना, ये नहीं कहा किसी ने। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में और अन्य जगहों में उन्होंने कई सुंदर मधुर लीलाएं की। खास करके जो वृंदावन की लीलाएं हैं भगवान की, वो अति मधुर हैं, विशेष हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की अर्थात ब्रजवासियों की जो प्रेम का संबंध था वो अतुल्य है, अपूर्व है। ऐसा प्रेम भगवान के प्रति जो कि ब्रजवासियों ने दिखाया वृंदावन में, आज तक इतिहास में किसी ने नहीं दिखाया। सबसे ऊंचा प्रेम, सर्वोच्च श्रेणी का प्रेम, तो भगवान और अपने भक्तों के बीच में शुद्ध प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो कई भगवान के अवतारों के कई भक्त हुए हैं, कई शुद्ध भक्त भी हुए हैं, परंतु जो वृंदावन में भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के प्रेम का आदान प्रदान हुआ है वो किसी ने नहीं दिखाया आज तक। इसलिए ये बड़ा विशेष प्रेम है। ये भगवान को कई तरह से हम प्रेम कर सकते हैं, जैसे हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं कई अलग अलग तरह के स्नेह होते हैं। वास्तव में संसार में जो हम प्रेम कहते हैं वो तो प्रेम नहीं है, प्रेम का एक विकृत प्रतिबिंब मात्र है। सच्चा प्रेम तो वो है जो कि भगवान पर केंद्रित होता है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि यहां एक नौकर अपने मालिक की सेवा करता है, अपने मालिक से शायद प्रेम करता हो। हाँ, कलयुग में ऐसे बहुत कम दिखने में आता है, लेकिन परंतु फिर भी है ये प्रेम। उसी तरह से मित्रों के बीच में प्रेम होता है और बच्चे और माता पिता के बीच में प्रेम होता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच में या पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है। तो ये सब अलग अलग तरह के संसार के प्रेम हैं, इनके रस अलग अलग होते हैं। तो यही रस जब भगवान में केंद्रित किए जाते हैं तो परिपूर्ण हो जाते हैं। तो वृंदावन में हम इन चारों रसों का आस्वादन करते हुए भक्तों को और भगवान को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में निवास करते थे तो उनके सेवक कई थे, उनके ग्वाल बाल मित्र कई थे, जैसे सुबल, मधुमंगल इत्यादि। उनके माता पिता यशोदा माता और नंद महाराज भी उनकी सेवा करते थे, कई वरिष्ठ गोप गोपियां भी थीं। साथ साथ और जो तरुण गोपियां थीं उनके साथ में भी भगवान श्री कृष्ण श्रृंगार रस में रास लीला भी करते थे। तो सारे अलग अलग रसों का स्वाद भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में लिया, बहुत मीठा, बहुत मधुर स्वाद, जो कि पहले किसी ने ऐसे स्वाद का आदान प्रदान नहीं किया था, किसी भी अन्य अवतार में नहीं किया था। तो भगवान ने अपनी इच्छा के अनुसार यहां धरातल पर ऐसे लीलाएं किए और फिर वो अपने धाम में लौटकर चले गए। फिर जब धाम में लौटकर गए तो विचार करने लगे। ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं। वो सोचने लगे कि बहुत समय हो गया, मैंने पृथ्वी लोक के निवासियों के ऊपर शुद्ध प्रेम बांटा नहीं है। अब वैसे शुद्ध प्रेम बांटने के लिए तो मेरे कई अवतार आगे जा चुके हैं, लेकिन इस तरह का प्रेम जो कि वृंदावन के निवासियों ने मुझसे किया था वो प्रेम मुझे सबको बांटना है। वैसे वेदों में कई विधि विधान बताए गए हैं, वो मेरे ही आज्ञा है, परंतु जो लोग धर्म का पालन करते हैं, वेदों में लिखे हुए विधि विधानों का पालन करते हैं, वो भी आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करते हैं, धार्मिक जीवन में रहते हैं, परंतु मुझे उस तरह से सेवा नहीं कर सकते, उस भाव में जैसे कि वृंदावन के निवासियों ने किया था। वो प्रेम, वृंदावन का प्रेम, केवल विधि विधानों के पालन करने से नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचे हैं कि ठीक है फिर हमें भी विधि विधानों का की पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें तो अवश्य पालन करना चाहिए। जो वृंदावन के निवासी थे उन्होंने पूर्व जन्मों में ये सारे विधि विधानों के पालन कर लिए थे। अभी वो एक ऐसे सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए थे जिसमें कि विधि विधानों की का कोई महत्व उनके जीवन में नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वृंदावन के निवासी ब्रजवासी वो जानते नहीं थे कि श्री कृष्ण भगवान है, और अगर जानते भी और अगर कोई उनको बताता भी तो इस बारे में वो परवाह नहीं करते, वो विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनका प्रेम बड़ा निकट का था, बड़ा तीव्र था। और ऐसे निकट और तीव्र प्रेम में अगर ऐश्वर्य की भावना की मिलावट हो जाती तो फिर वो जो भक्ति का आनंद था वो किरकिरा हो जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि ठीक है, जो लोग मेरे वेदों के नियमों का पालन करते हैं अच्छी ढंग से वो मेरे महिमा को कहीं हद तक जान सकते हैं, शायद मेरे भक्त भी बन सकते हैं, मेरे शुद्ध भक्त भी बन सकते हैं। लेकिन वो प्रेम में जिसमें कि ऐश्वर्य भावना की मिलावट है मुझे इतना प्रसन्न नहीं करती है जितना कि शुद्ध प्रेम जैसे कि वृंदावन के निवासियों ने किया था। ऐश्वर्य भावना में प्रेम मतलब क्या है? मतलब जब भक्त सोचता है कि भगवान कितने महान हैं, भगवान परम शक्तिमान हैं, भगवान सारे ब्रह्मांडों के उद्गम हैं, वो सारे देवी देवताओं के स्वामी हैं, वो कितने बड़े हैं और हम कितने छोटे हैं। ये जो ऐश्वर्य की भावना है, भगवान की महानता के ऊपर ज्यादा जब जोर दिया जाता है, उनके ऐश्वर्यों के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, तो ये ऐश्वर्य भाव की भक्ति कहलाती है। लेकिन वो मिठास, वो माधुर्य उस भक्ति में नहीं होती है, क्योंकि वृंदावन में कोई ऐसे नहीं सोचता था कि कृष्ण भगवान है। लोग केवल यही सोचते थे, ग्वाल बाल सोचते थे कि कृष्ण मेरा मित्र है। कभी आपस में झगड़ा करते, कुश्ती करते और कहते कि तुम हमारे से शक्तिशाली थोड़ी हो, हम सब एक समान हैं, तुम्हें कौन बड़े लोग, तुम्हें हम शाम, तुम कौन से बड़े आदमी हो, हम तुम दोनों बराबर के हैं, हम कुश्ती करेंगे तुम्हें हरा भी डालेंगे। तो ये उनका भाव है। वो कभी नहीं सोचते कि कृष्ण हमारा मित्र जो है वो भगवान है। अगर वो ऐसा सोचते तो इस तरह से कृष्ण के साथ मित्रता से व्यवहार नहीं कर सकते थे, और अगर ऐसा वो नहीं करते तो कृष्ण को ये सख्य रस का आनंद नहीं मिलता। इसलिए जानबूझकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आंखें ढक दी कि वो जान नहीं पाए, स्मरण नहीं कर पाए कि वो भगवान है। उसी तरह से नंद महाराज और यशोदा माता भी नहीं जानते थे कि उनका बेटा भगवान है। वो तो केवल यही जानते थे कि ये हमारा लाडला पुत्र है, इसका देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। माता यशोदा हमेशा नाना प्रकार के मंत्रों के उच्चारण करती थी कृष्ण के संरक्षण के लिए। उसी तरह से गोपियां जो हैं, तरुण गोपियां, वो भगवान कृष्ण को अपने प्रेमी समझती थी। कोई ये नहीं समझता था कि कृष्ण भगवान है, इसलिए उनके जो प्रेम में जो मिठास था वो अतुल्य था, अपूर्व। इस वजह से ऐसे भक्ति में भगवान को बहुत रुचि है, बहुत आनंद मिलता है। तो भगवान सोच रहे हैं कि ऐश्वर्य भाव की भक्ति करने वाले वो वेदों के विधि विधानों का पालन करके वो वैकुंठ जा सकते हैं, जहां पर मैं चतुर्भुज रूप में विराजमान रहता हूं, लेकिन मैं मेरे आदि रूप में श्याम सुंदर गोविंद के रूप में गोलोक वृंदावन में रहता हूं, और यहां तो कोई ऐसे मुझे भगवान नहीं समझता, तो इस तरह का प्रेम जो है मुझे प्रदान करना है, जो कि मैंने बहुत बहुत समय से प्रदान नहीं किया हुआ है। तो ऐसे सोचते सोचते फिर भगवान कृष्ण ने ठान लिया कि हां, मैं अभी प्रकट होने वाला हूं कलयुग में पृथ्वी लोक पर, और नदियों में नवद्वीप में प्रकट हो जाऊंगा और जगह जगह जाकर मैं ये वृंदावन का भाव, ये वृंदावन का प्रेम सब जगह बांटूंगा, घर घर में बांटूंगा, गली गली में, गांव गांव में, देश देश में बांटूंगा। ये मेरा उद्देश्य होगा। और फिर भगवान प्रकट हुए, वही भगवान जो 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में प्रकट हुए थे, श्री कृष्ण के रूप में बांसुरी बजाते हुए, गौओं को चराते हुए, गोपियों के साथ रासलीला करते हुए, वही श्री कृष्ण केवल 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप में, नदिया जिला में प्रकट हुए। किस हेतु? केवल इस वृंदावन के कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए, जो पहले कभी नहीं बांटा गया था। जब श्री कृष्ण प्रकट हुए थे मथुरा के कारागार में, और फिर वसुदेव उनको वृंदावन ले गए थे, गोकुल ले गए थे, फिर नंद महाराज ने उनका नामकरण संस्कार किया गर्ग मुनि के द्वारा, तो गर्ग मुनि ने जब उनका जातक वगैरह देखा तो वो समझ गए कि ये कोई विशेष बालक है, कोई साधारण नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा नंद महाराज से कि हे नंद महाराज, आपका जो बेटा है वो पहले भी प्रकट हो चुका है और अलग अलग रंगों में, अब इसका वर्ण सांवला है, लेकिन पहले भी अलग अलग युगों में वो अलग अलग रंगों में प्रकट हो चुका है। शुक्लो रक्तस तथा पीतम इदानीम कृष्णताम गतः। सत्ययुग में वो शुक्ल रंग में आया था, शुक्ल मतलब सफेद, त्रेता युग में रक्त मतलब लाल रंग धारण करके आया था, और अब कलयुग में, द्वापर युग में वो सांवला है, कृष्णताम गतः, कृष्ण मतलब काला, सांवला। और कलयुग में उनका रंग कैसा होता है? पीत, पीला। तो ये अलग अलग युगों में जो युग अवतार होते हैं उनके अलग अलग रंग होते हैं। तो उस समय भी गर्ग मुनि ने घोषणा की थी कि इस समय आपका पुत्र जो है वो सांवले रंग का है, लेकिन आगे चल के कलयुग में वो पीला रंग धारण करेगा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भी करभाजन मुनि बताते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान प्रकट होते हैं तो सांवले रंग के होते हैं और मोर पंख धारण किए हुए, कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स धारण किए हुए अपने वक्ष स्थल पर वो लीला करते रहते हैं, लेकिन कलयुग के युग अवतार पीले रंग के होते हैं। और वो चीज यहां अर्पण करने आए हैं जो कि पहले किसी भी अवतार ने नहीं किया। अनर्पित चरिन चिरात करुणया वितीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरत सुंदरम द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्मरतु वह शचिनंदनौ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, मैं उन शचिनंदन के चरण कमलों में निवास नमन करता हूं, वो शचिनंदन आपके हृदय में सदा स्फुरित रहे, जो कि उस चीज को बांटने के लिए आए हैं जो पहले कभी भगवान ने नहीं बांटा था, अनर्पित, जो अर्पित कभी नहीं किया था भगवान ने। बहुत लंबे समय से अनर्पितम चिराम चिरात, बहुत लंबे समय से नहीं किया था, चिरात मुझे बहुत लंबा समय, उसको प्रदान करने के लिए समर्पय तुम वो आए हैं। उन्नत उज्ज्वल रसाम, ये बहुत ही उज्ज्वल रस है भक्ति का, वृंदावन का रस है। और ये जो शची नंदन है, शची देवी के पुत्र हैं, हरि ही पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, वो स्वयं हरि हैं, कदम्ब संदीपितः, चमकते हुए पुरट सुंदर, पिघले हुए सोने का वर्ण उनका है। इस तरह से वर्णन आता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा। चैतन्य महाप्रभु ये भगवान के अवतार हैं, अवतार तो नहीं, अवतारी हैं, स्वयं भगवान है, भगवान के अंश रूप नहीं है। तो वो प्रकट हुए हैं, इसके कई प्रमाण शास्त्रों में पाए जाते हैं। उनमें से एक या दो उदाहरण हम बताएंगे। जैसे कि महाभारत में बताया जाता है, सुवर्ण वर्ण है मांगो वरांगस चंदना गदी, संन्यास कृत शम शांतो शांति निष्ठा परायण। महाभारत में बताया जाता है विष्णु सहस्त्र नाम में कि भगवान का एक विशेष अवतार है कि वो ऐसे रंग धारण करके आते हैं जो कि स्वर्ण का हो, सुवर्ण वर्ण हेम अंग, बहुत सुंदर उनका वर्ण है। वरांगस चंदनांगदी, उनके सुंदर शरीर के ऊपर चंदन का लेप लगाया होता है। संन्यास कृत, वो संन्यास आश्रम को ग्रहण करते हैं। शम शांत, उन्होंने अपने इंद्रियों को दमन कर लिया होता है। निष्ठा शांति परायण, हमेशा हरिनाम संकीर्तन भगवान के कीर्तन में भक्ति में लगे रहते हैं। ये है भगवान। इस तरह से भगवान का सुंदर रूप इस कलयुग में दो भुजाओं वाला गौर वर्ण का, बड़ा लंबा कमल जैसे आंखें, ऐसे लंबे भुजाएं जो तक उनके घुटनों तक पहुंचते हैं। आजान लंबित भुजाओ कनकावदातो, मतलब घुटनों तक पहुंचने वाले उनके भुजाएं हैं। कनकावदातो मतलब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण के हैं। संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो, उन्होंने आकर यह संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन किया है। कमल कमलताक्षो, उनके आंखें कमल के जैसे हैं। विश्वम भरो द्विजवरो युग धर्म पालो, उन्होंने इस युग धर्म का पालन किया है। विश्वम भर हैं दोनों, सारे ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बलराम जी के साथ, जो कि नित्यानंद प्रभु हैं, यहां पर प्रकट हुए थे। गौर वर्ण है उनका, इसलिए उनका नाम गौरांग भी है। उनके जन्म के समय उनके माता पिता ने उनका नाम रखा था विश्वंभर। विश्वंभर मतलब जो सारे ब्रह्मांड का पालन पोषण करता है, रक्षण करता है। और उन्होंने कैसे किया, कृष्ण नाम का संकीर्तन करके, कृष्ण प्रेम बांट के। संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद उन्हीं का नाम हो गया श्री कृष्ण चैतन्य। लेकिन भक्त उनको प्रेम से महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गौरांग महाप्रभु कहते हैं। तो ये है कलयुग के अवतार जो हमें कृष्ण प्रेम, वृंदावन का कृष्ण प्रेम बांटने आए हैं। जब से वो प्रकट हुए तब से उन्होंने सारे लोगों के मुंह से भगवान का नाम निकाला। इसी दिवस पर कई साल पहले, 500 साल के भी अधिक, मायापुर में, नवद्वीप में वो प्रकट हुए, फाल्गुन पूर्णिमा में। और उस समय ग्रहण था, इसलिए सारे लोग हरि का नाम का उच्चारण कर रहे थे। सारी अवस्था सब जगह शुभ थी। और इस तरह से भगवान के नाम के संकीर्तन होते होते भगवान प्रकट हुए। जब वो बाल लीला भी करते थे तो बीच बीच में रोया करते थे। और फिर उनकी मां शची माता या अन्य जो वहां की महिलाएं थीं, उनको शांत करने का प्रयास करते, लेकिन वो शांत नहीं होते। लेकिन जब वो हरि कीर्तन करते तुरंत शांत हो जाते। इसलिए जानबूझकर बालक निमाई, जो कि उनका नाम था बुलाने का, वो रोते रोते रहते। और फिर लोग जानते कि इसको रोकने का तरीका एक ही है, हरि नाम संकीर्तन करो, हरि हरि बोलो। इस तरह से बड़े चतुराई से उन्होंने अपने बाल्य अवस्था में भी सबके मुख से हरि का नाम निकलवाया। इसलिए हरि नाम संकीर्तन पहले से नवद्वीप में चलता रहा। जब वो थोड़े बड़े हुए, अपने मित्रों के साथ, भक्तों के साथ जगह जगह, गली गली में फिरकर वो नाम संकीर्तन करने लगे। आप में से जो नदिया निमाई ये छवि देख चुके हैं, आप जानते हैं, आपने देखा होगा कितने सुंदर ढंग से वो जगह जगह नवद्वीप के गलियों में घूमते फिरते संकीर्तन करते थे। सबसे पहले उन्होंने भक्तों को सिखाया, अपने शिष्यों को, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, अपने शिष्यों के साथ ही कीर्तन करते थे। और बाद में सब चारे वैष्णव इकट्ठे हो गए तो सड़क में घूमते घूमते रहे कीर्तन करते करते। श्री कृष्ण गोविंद मुकुंद वन माली, बोलिए, कृष्ण श्री कृष्ण मुरारी मुकुंद वन माली, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से बड़े मधुर ढंग से हाथ ऊपर किए हुए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ में और अन्य भक्तों के साथ में झूमते रहते, झूम झूम कर बड़े सुंदर तरह से नृत्य करते करते वह नवद्वीप के सड़कों से जाते नगर संकीर्तन करते। कितना सुंदर दृश्य हुआ होगा। और इस तरह से सुबह सुबह को निकलते, भगवान ने अवतार लिया है इस कलयुग में हाथ ऊपर करके। हाथ ऊपर करने का महत्व क्या है? शरणागति, तव अस्मि, मैं आपका हो गया है प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कंगाल हूं, जो भी कुछ है वो आपका है, अब मैं आपके शरण में आया, अब केवल आपकी सेवा करना है, आपका नाम लेना है मुझे बस। और हाथ ऊपर करने का महत्व दूसरा भी है कि आनंद में झूमते हुए हाथ ऊपर करते हैं। तो यह सुंदर दृश्य धीरे धीरे से भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और जैसे महाप्रभु अपने भक्तों के साथ चलते, जगह 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 से लोग एकत्र हो जाते और बड़े सारे नवद्वीप में एक बाढ़ आ गया। कैसा बाढ़? गंगा जी का नहीं, कृष्ण प्रेम का। सभी लोग झूमते झूमते जाते थे। यहां पर सुंदर तस्वीर है लेकिन पर्दे की वजह से आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन पर्दा जब खुल जाएगा तो आप देखेंगे कैसे महाप्रभु अपने भक्तों के संग हाथ ऊपर करके कीर्तन करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है एक भजन में। आप गाना चाहते हैं वो भजन? ये गजन भजन वैसे सुबह को गाया जाता है, प्रातः काल में जब सूर्योदय होता है, परंतु अभी हम अपने मन में विचार कर लें कि अरुणोदय है। मन में सोच लीजिए कि अभी रात के 8 नहीं बजे, सुबह के 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, ऐसा सोच लीजिए। और ये भजन हम गाएंगे, भक्ति विनोद ठाकुर का वर्णन है, उडुल अरुण पूरब भागे, नगर संकीर्तन में जाया करते थे, श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन किया करते थे, पहले तो केवल दिन में, फिर रात में भी दिन रात कीर्तन रस का स्वाद लेते रहते। भगवान के नाम में इतना मिठास है कि एक बार किसी व्यक्ति ने इसको चख लिया तो फिर वो इसको छोड़ नहीं पाएगा। और जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हुए इस रस का आस्वादन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से रोगी है, बीमार है। श्रील प्रभुपाद बताया करते थे कि कभी कभी एक मरीज को पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस, फिर वो जब कोई मीठे वस्तु का स्वाद लेता है तो उसे मिठास नहीं लगता, कड़वा लगता है। अगर वो गन्ने का रस भी पिएगा जो कि वास्तव में बहुत मीठा है, फिर भी उसे वो मीठी चीज कड़वे लगेगी। लेकिन पीलिया के लिए गन्ने का रस ही एकमात्र इलाज है। तो जैसे जैसे वो गन्ने का रस पीते जाता है, वैसे वैसे उसकी बीमारी ठीक होती जाती है और वैसे वैसे उसे गन्ने के रस का स्वाद धीरे धीरे से मिलने लगता है। और जब पूरी तरह से उसकी बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर वो पूरी तरह से इस गन्ने के रस का स्वाद ले सकता है। तो ठीक उसी तरह से, क्योंकि हम सब भगवान को भूल चुके हैं, अनादि काल यहां पर इस ब्रह्मांड में नाना योनियों में हम भ्रमण कर चुके हैं, इसलिए हमें भगवान के नाम में रुचि नहीं मिलती। हम संसार के रस में इतना हम रमण करते आए हैं इतने करोड़ों सालों से, जन्मों से, कि अभी जब भगवान का नाम लेते हैं तो फिर वो रस, वो आनंद हमको नहीं मिलता। तो हमें आश्चर्य होगा कि चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ दिन रात कैसे इतना कीर्तन किया करते थे, क्योंकि हृदय शुद्ध हो गया था। तो कीर्तन करने से अगर हमारा हृदय अशुद्ध है वो भी शुद्ध हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम परम विजय तो श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण का परम विजय हो, जिसका स्वीकार करने से व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है। और ऐसे शुद्ध चित्त में जब भगवान का नाम लेता है, आनंद अम्बुधि वर्धनम, अम्बुधि मतलब सागर, वो आनंद के सागर में रहता है और ये सागर की वृद्धि होती रहती है, ज्यादा से ज्यादा आनंद उसे मिलते रहता है। तो इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करके ही हम जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और यही चीज सिखलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। अपने बाल्यावस्था में, अपने तरुण अवस्था में, हर अवस्था में उन्होंने अपना असली रूप भी दिखाया भक्तों को। उनके जो निकट के भक्त थे उनको उन्होंने अपना असली स्वरूप दिखाया, अलग अलग रूप दिखाए। एक बार की बात है, जब भगवान ऐसे बालक की लीला कर रहे थे नवद्वीप में, शची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर में, उनका नाम प्रेम से निमाय रखा गया था, तो वहां पर उनके घर में एक ब्राह्मण आए। ये ब्राह्मण भगवान श्री बाल गोपाल के शुद्ध भक्त थे, इधर उधर भ्रमण करते रहते थे, और अचानक वो यहां पर जगन्नाथ मिश्र के घर में आ पहुंचे। तो जब जगन्नाथ मिश्र ने उनको देखा तो बड़े आदर पूर्वक उनका स्वागत किया, स्वागत करके उनको अंदर बुलाया, और जब उनका स्नान वगैरह हो गया था तो उनसे कहा कि आप अगर पकाना चाहें भोग तो आपके लिए हम व्यवस्था कर देते हैं। तो रसोई घर वगैरह वो अच्छी तरह से साफ कर दिया और उनके लिए तैयार कर दिया। उन्होंने पूछा, जगन्नाथ मिश्र ने उस ब्राह्मण से, कि आप कहां से आए हो, आपका निवास स्थान क्या है। उन्होंने कहा कि जहां मेरा विचलित मन मुझे ले जाता है मैं वहां घूमता फिरता हूं, पर्यटन करते करते मैं जहां भी पहुंच जाता हूं वहीं पर रह जाता हूं। तो जगन्नाथ मिश्र पहचान गए कि ये तो भगवान के शुद्ध भक्त है, तो कहने लगे कि आपका पर्यटन तो केवल बद्ध जीवों के उद्धार के लिए है, तो आइए आप रसोई आरंभ कीजिए। उस समय बड़े प्रेम से उस ब्राह्मण ने रसोई अपने बाल गोपाल के लिए और शालिग्राम शिला के लिए आरंभ किया। बाल गोपाल और शालिग्राम शिला को हमेशा वो अपने गले में एक थैली में लटका के रखते थे, और जब किसी के घर में रह जाते थे तो उनको आसन ग्रहण कराकर उनकी सेवा किया करते थे। तो बड़े प्रेम से उन्होंने भोग तैयार किया और वो भगवान को नैवेद्य में रखा, और जब बाल गोपाल के सामने उन्होंने रखा, मन में चिंतन कर रहे थे भगवान का कि आप कृपया स्वीकार कीजिए। उस समय बालक निमाई वहां पे अंदर चले आए निर्वस्त्र, लेकिन तेजस्वी प्रकाशमान, स्वयं भगवान है लेकिन बाल लीला कर रहे हैं सुंदर मधुर रूप में। वहां पर आए क्योंकि उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया था, भगवान को बुलाया था कि आप स्वीकार कीजिए। तो निमाय पंडित चले आए, पंडित तो नहीं थे उस समय, बालक थे, और आकर उन्होंने उस भोग चावल जो था उसको अपने हाथों में लिया और मुंह में डाल दिया। तो जब ब्राह्मण ने देखा तो हाय हाय कहने लगा, रे रे भोग खराब हो गया, खराब हो गया। तो जब जगन्नाथ मिश्र ने यह बात सुनी तो अंदर दौड़ के आ गए और देखा कि भगवान को भोग अर्पण करने के पहले उनके बच्चे ने भोग खा लिया था। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, निमाय को पीछे भागे मारने के लिए। तो उस समय ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं, देखो ये तो छोटा बच्चा है, इसकी विवेक बुद्धि अभी तक विकसित नहीं हुई है। जिसके अंदर विवेक बुद्धि नहीं है ये निर्णय करने के लिए कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, ऐसे लोगों को हमें कभी मारना नहीं चाहिए, ये तो अबला बालक है, कुछ मत कीजिए, कोई बात नहीं। देखिए जो भी हमारे आज एक दिन में आने वाला है वो लिखा हुआ होता है, तो शायद भगवान चाहते हैं कि मैं अभी उपवास करूं, मेरे आज नसीब में चावल नहीं लिखा है, तो मैं ऐसे संतुष्ट रहूंगा, कोई बात नहीं। तो जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप हमारा दिल ऐसे दुखी मत कीजिए, आप कृपया फिर से आप पकाइए, हम आपको सारा सब कुछ साफ करके देंगे, हमारे लिए कृपया आप कीजिए, नहीं तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे कि आप हमारे घर में आए और फिर आप भूखे होकर आप चले गए, ऐसे ठीक नहीं है। तो फिर उनके आग्रह से फिर वो मान गए। शची माता जगन्नाथ मिश्र ने जल्दी से सारे रसोई को सफाई किया, स्वच्छ करके नए सामग्री उनके सामने रख दिए और निमाय को पड़ोस में भेज दिया। और वहां पर कई महिलाएं थीं और उन महिलाओं को शची माता ने कहा कि अपने साथ ही रखना है इसको, कहीं यहां इधर उधर जाए नहीं, ये बेचारे ब्राह्मण आए थे यहां पर और उनका भोग उन्होंने दूषित कर दिया। तो जब सब सारी महिलाएं सब बैठी थी बालक निमाय को अपनी गोदी में लेकर, जिसके भी गोदी में निमाय जाते वो प्रेम से भावभोर हो जाते और फिर निमाय से कहते, अरे निमाय तुमने क्यों उस ब्राह्मण का भोग दूषित कर दिया, क्यों खा लिया तुमने, तुमको मालूम नहीं कि भगवान कृष्ण को अर्पण करने के पहले कुछ खाना नहीं चाहिए। तो बालक निमाय बड़े सुंदर ढंग से बोलने लगा, इसमें मेरा क्या दोष है, वो ब्राह्मण ने मुझे बुलाया मंत्रों के द्वारा और मैं चला गया, तो उसने जब बुलाया मैं गया, मैंने खाया, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। फिर उन्होंने पूछा, अरे निमाय जरा सोचो तो सही, ये ब्राह्मण कहां से आया है, कहां से रहता है, उसकी क्या है, कुछ हमें कुछ नहीं मालूम, और ऐसे ब्राह्मण का भोजन तुमने ग्रहण कर लिया तो तुम्हारे जाति का क्या होगा, तुम तो ऊंचे ब्राह्मण जाति के हो तो तुम्हारे जाति तो नष्ट हो गया। तो निमाय उत्तर देने लगा, मैं तो वैसे मूल रूप में ग्वाल बाल हूं, मैं तो गायों को चराता हूं और मैं तो ब्राह्मणों का चावल ही खाता हूं, तो अब भी मैंने अगर ब्राह्मण का चावल खा लिया तो कौन सी बड़ी गलती कर ली है मैंने, कोई दोष नहीं है इसमें। तो सारे महिलाएं सोचने लगी, ये छोटे बच्चे की बड़बड़ाहट है। तो बड़े आनंद से उसे आलिंगन करके वहां उसके साथ में बैठ गए। उधर दूसरी बार उस ब्राह्मण ने सारा भोग तैयार किया, भगवान को अर्पण किया, फिर से ध्यान में बैठे भगवान से प्रार्थना करते रहे, मंत्रों से उनका आह्वान किया कि आइए। उधर निमाय उन महिलाओं के साथ में बैठे थे, वो भी स्वयं श्री कृष्ण हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो वो समझ लिया कि वो ब्राह्मण मुझे बुला रहा है, तो तुरंत अपनी माया का प्रयोग करके वहां से निकल पड़े जहां की वो महिलाएं थी पड़ोस में, और सीधे उस पूजा घर में चले गए जहां बाल गोपाल थे। और बाल गोपाल के सामने जो चावल भोग में रखा हुआ था, फिर से अपने मुट्ठी उसमें डाली और अपने मुंह में डाल दिया। जब ब्राह्मण ने देखा, दोबारा हो गया, हाय 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 हाय, फिर से इस चंचल बालक ने सब कुछ नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। तो इस समय जगन्नाथ मिश्र भाग कर आए, इस बार लाठी लेकर आए, अब तो इसको छोड़ूंगा नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब निमाय वहां से ले भागे, ऐसे भागे जोर से मानो कि अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। और पीछे पीछे बेचारे जगन्नाथ मिश्र, जो कि काफी भारी शरीर के थे, इतनी तेजी से नहीं भाग सकते थे, भागते भागते लाठी लेकर उनके पीछे, अब तुम्हें सिखाता हूं, देखो मेरा दुर्भाग्य क्या है, सारा दुनिया का सबसे बड़ा चोर मेरे घर में जन्म लिया है। वो जानते नहीं थे कि वो कितने सच्ची बात कह रहे थे, कि भगवान से बड़ा चोर कौन हो सकता है, सबका हृदय चोरी करने वाला, माखन भी चोरी करता है। तो इस तरह से वो बहुत पीछे लगे, उनके सारे जो घर में अतिथिगण आए थे, पड़ोस के लोग थे, वो कहने लगे, अरे मिश्र जी क्या करते हैं आप, संभलिए अपने आप को, ये आपको शोभा नहीं देता है, आप तो इतने बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, आप तो सज्जन आदमी हैं, ये सज्जन आदमी ऐसे बच्चों को मारपीट नहीं करते हैं, ठीक नहीं लगता, अरे देखो इसने कितना सत्यानाश किया, कैसा मूर्ख लड़का है। फिर भी किसी न किसी तरह से सारे दूसरे लोगों ने उनको सांत्वना दी, उनको शांत कर दिया। जगन्नाथ मिश्र अपने हाथों में अपना सिर लेके बैठ गए, क्या किया जाए। उस समय ब्राह्मण ने कहा, बस आप चिंतित मत होइए, मैं समझ गया हूं कि यह भगवान की इच्छा है, अब मेरे लिए आज के लिए भोजन नहीं रखा है, कम से कम अन्न नहीं रखा है, तो आपके घर में जो कुछ ऐसे फल फूल हो, जड़ी बूटी हो, मुझे दे दीजिए, मैं वो खा लूंगा। वैसे भी मैं जंगल में रहता हूं, जंगल में कहां मुझे अनाज मिलता है, मैं जड़ी बूटियों से संतुष्ट रह जाता हूं। तो उस समय जगन्नाथ मिश्र के बड़े भाई, जिनका नाम था विश्वरूप, जो स्वयं श्री नित्यानंद के रूप है, वो आए वहां पर। इतना परम सुंदर रूप उनका, ब्राह्मण उसकी ओर देखते रह गए और पूछा कि ये कौन है, किसका पुत्र है। तो दूसरों ने बताया कि ये तो जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है। और फिर बड़े नम्रता से, बड़े प्रेम से विश्वरूप ने उस ब्राह्मण को नमस्कार किया। उस ब्राह्मण ने कहा कि जगन्नाथ मिश्र जी, आपका जीवन धन्य हो गया, ऐसे पुत्र आपको मिला। विश्वरूप कहने लगे कि आप जैसे अतिथि हमारे घर में आए, हमारा घर धन्य हो गया, हमारा आज का दिवस वास्तव में सफल हुआ। जिस घर में आप जैसे शुद्ध भक्त भगवान के जाते हैं, उनका घर पावन हो जाता है। तो आप जैसे महाभागवत दूसरों को कभी दुखी नहीं करते हैं, अगर अब आप खाएंगे नहीं तो यह हम सब लोग दुखी हो जाएंगे। अब जो हुआ है वो बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्या करें, हमारा छोटा भाई जो है बड़ा चंचल है, इसलिए ये दुर्भाग्य की बात हुई है, कृपया आप और एक बार रसोई बनाइए और बाल गोपाल को भोग चढ़ाकर आप आराम से अब खाइए। तो ब्राह्मण ने कहा, देखो बीच रात हो गई, दो बार तो मैं पका चुका और दोनों बार ये चंचल बालक ने मेरे नैवेद्य को है दूषित कर दिया, तो मैं समझ गया हूं कि भगवान कृष्ण मुझे आज उपवास करने का आदेश दे रहे हैं। ठीक है, आप इतना ही बोल रहे हैं तो मैं कुछ सूखा प्रसाद ले लूंगा, जो भी फल वगैरह आपके घर में है, लेकिन इससे ज्यादा अब क्या फायदा है। और वैसे भी तो विश्वरूप के मीठे शब्दों से, उनके मधुर वाणी से, जो कि अमृत के धारा के बराबर थी, वो ब्राह्मण बड़े प्रभावित हो गए। कहने लगे, ठीक है आप इतना कह रहे हो तो कर लेता हूं। तो और एक बार शची माता, जगन्नाथ मिश्र इत्यादि ने सारा रसोई घर साफ कर दिया गोबर इत्यादि से, फिर और सामग्री आके सामने रख दिए। और इस बार जगन्नाथ मिश्र ने कहा, कई महिलाओं को कहा कि इसको लेकर अंदर कमरे में बैठो, और मैं अंदर से भी ताले लगाओ, मैं बाहर से भी ताले लगाता हूं, और हम लोग खुद डंडा लेके बाहर बैठते हैं, अब देखते हैं ये बच्चा कैसे निकलेगा कमरे से। तो इस तरह से बालक निमाय अंदर आराम से गए, सब महिलाएं वहां अंदर थी, शची माता भी अंदर थी, और बाहर जगन्नाथ मिश्र बैठे थे लाठी लेकर।
रात काफी हो चुकी थी और इस ब्राह्मण ने पकाना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत समय तो लग ही जाता है पकाने में, लेकिन उस समय निमाय पंडित ने फिर से सुना कि ब्राह्मण ने बुला रहा है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, भोग अर्पण कर रहा है, मुझे बुला रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन अब क्या करें, सभी लोग जगे हुए हैं, भगवान के लिए कौन सा ताला बंद करके उनको रख सकता है। तो उन्होंने अपनी दासी को बुलाया, उनके कई दासी हैं, दास हैं, उनमें से एक दासी का नाम है निद्रा देवी। निद्रा देवी का काम क्या है मालूम है? आशा करता हूं कि अब वो किसी के ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही है इस समय। तो निद्रा देवी आई और केवल उनके छाया मात्र से सारे लोग अंदर और बाहर गहरी नींद में आ गए। और फिर निमाय आसानी से पहुंच गए बाहर, बाल गोपाल के सामने, उस ब्राह्मण के सामने जो कि हाथ जोड़ के बड़े ध्यान में बैठे थे कि इस बार तो कुछ नहीं होना चाहिए। और उस समय फिर से तीसरी बार निमाय ने जाकर चावल में मुट्ठी मार दी और अपने मुंह में डाल दिया। इस बार बेचारे ब्राह्मण वो तो रोने ही लग गए, अरे हाय हाय क्या है ये चंचल बालक। तो उस समय निमाय बड़े मीठे ढंग से बोलने लगे, अरे ब्राह्मण तुमने मुझे बुलाया और मैं आया, तो इसमें क्यों रो रहे हो, दुख की क्या बात है? तुम्हारी प्रार्थना तो मैंने सुन ली, तुम चाहते थे कि मैं इस भोग को स्वीकार करूं और तीन बार मैंने स्वीकार कर लिया, फिर भी तुम दुखी हो। और उस समय निमाय ने उनको एक विशेष रूप दिखाया, आठ भुजाओं का रूप, चार भुजाओं में नारायण स्वरूप था, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, दो भुजाओं में बांसुरी भगवान कृष्ण की, और दो भुजाओं में, एक में वो मटका था जिसमें दही वगैरह था और अन्न था, और दूसरा हाथ उसमें से लेकर वो खा रहे हैं। आठ भुजाएं, अद्भुत रूप, इसमें वैकुंठ का भाव भी आ गया, ब्रज का भाव भी आ गया, क्योंकि वृंदावन में तो चतुर्भुज के भगवान नहीं होते हैं। तो जब वो ब्राह्मण ने देखा, बिल्कुल स्तंभित रह गए, निर्वचन अवाक रह गए, कुछ बोल नहीं पाए, भाव विभोर होकर वहां गिर पड़े, बेहोश हो पड़े। फिर निमाय ने जाकर उनको स्पर्श किया, फिर से उनका होश आया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, गंगा की तरह है, भक्ति के सारे लक्षण प्रकट होने लगे। और फिर भगवान उनसे कहने लगे कि हे ब्राह्मण विचलित नहीं हो, ये जान लो कि तुम मेरे कई जन्मों के सेवक हो, हर जन्म में तुम मेरे पास आते हो और ऐसी ही लीला होती है। पिछली बार जब मैं प्रकट हुआ था 4,500 वर्ष पूर्व वृंदावन में, मैं उस समय नंद महाराज और यशोदा माता के घर में प्रकट हुआ था और मैं छोटा बालक था, बच्चा था, उस समय भी तुम मेरे पास आए थे। एक रात को नंद महाराज के घर में रहे थे तुम, मेरे पिता के घर में, और वहां पर इसी तरह की लीला हुई थी, आपके भोग मैंने नष्ट किया था, नष्ट मतलब मैंने ही स्वीकार किया था, लेकिन आप मुझे पहचान नहीं पाए थे। इस तरह से हर जन्म में आप मेरे साथी हो, आप मेरे पार्षद हो, इसलिए चिंता नहीं करना, मैंने तुम्हारे ऊपर ये विशेष कृपा की है, ये अद्भुत रूप मेरा दिखाया है, मैं अवतार अभी ले चुका हूं केवल कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए, हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन के माध्यम से मैं जगह जगह जाकर इस कृष्ण प्रेम को बांटूंगा। लेकिन हे ब्राह्मण मेरा आदेश है तुम्हारे लिए, किसी को भी इस बात को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें क्या दृश्य दिखाया और तुमने क्या देखा, मेरा असली स्वरूप क्या है किसी को भी पता नहीं होना चाहिए, और अगर तुमने किसी को बता दिया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ब्राह्मण बोले नहीं नहीं। तो फिर ब्राह्मण बड़े भाव विभोर हो गए और फिर वापस वहां से निमाय चले गए। उधर वो ब्राह्मण बड़े आनंद से जो चावल था, जो प्रसाद था, उसको अपने सारे शरीर पर लेप लगाने लगे, क्योंकि स्वयं भगवान आए हैं, खाने लगे, लेप लगाने लगे। उनको पता नहीं चल रहा था, इतने प्रेमावेश में आ गए थे कि वो क्या कर रहे हैं पता नहीं था। कभी हंसने लगे, जोर जोर से बाल गोपाल का गुणगान करने लगे, चिल्लाने लगे, हंसने लगे, नृत्य करने लगे। जब इतना हंगामा होने लगा तो उस समय घर में सारे लोग जो कि निद्रा देवी के प्रभाव में थे वो जाग गए, जाके भाग के आ गए। ब्राह्मण, क्या हो गया, फिर से नष्ट हो गया? नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ठीक, हम खुश हैं, हमें प्रसाद ग्रहण कर लिया। उन्होंने देखा कि ये क्या हालत है, सब जगह चावल शरीर पर लगा हुआ है। ब्राह्मण सोच रहे थे मन में कि क्या मुझे बताना चाहिए इनको कि इनके घर में जो लड़का है वो साधारण बच्चा नहीं है, ये जगन्नाथ मिश्र तो उसको साधारण बच्चा समझते हैं, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण उनके घर में जन्म ले चुके हैं, कितना सौभाग्य है इनका, क्या उनको बताना चाहिए? हाँ चलो बताना चाहिए। लेकिन फिर उनको याद आया, नहीं, भगवान ने बताया था कि मैं अगर बताऊंगा तो मुझे खत्म कर देंगे, तो इसलिए फिर वो चुप रहे, किसी को बताए नहीं। फिर कई दिन तक वो नवद्वीप में रहे और हर रोज आकर बालक निमाय का दर्शन किया करते थे। दर्शन करके फिर से चले जाते अपने भ्रमण में। तो ऐसे भगवान की लीलाओं में उनके कई नित्य पार्षद आते हैं जो बार बार उनके अलग अलग अवतारों में उनकी लीलाओं में शामिल होते हैं। और भगवान के मन में भी जो आनंद है उसका स्वाद बढ़ाते हैं और खुद उस स्वाद का आस्वादन करते हैं। इस तरह से इस विशेष अवतार में चैतन्य महाप्रभु ने यह सिद्ध कर दिखाया कि वह स्वयं भगवान है और वह एक भक्त के रूप में आए हैं और सबको सिखा रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई आचरण नहीं करता वो सिखा कैसे सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे अच्छी तरह से आचरण करके दिखाया कि भगवान की भक्ति क्या होती है। जिस तरह से एक माँ कभी कभी अपने बच्चे को अ आ ई ई सिखाती है खुद लिखकर, उसी तरह से भगवान स्वयं आए हैं हम सबको सिखाने के लिए कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। खुद भक्ति करके हम सबको सिखा रहे हैं और ये केवल 500 वर्ष पूर्व। तो हमारा कितना सौभाग्य है कि भगवान के इतने दो विशेष रूप, उनके आदि रूप श्री कृष्ण के जो कि 5000 वर्ष पूर्व आए, और ये चैतन्य महाप्रभु का रूप जो कि अति कृपालु है केवल 500 वर्ष पूर्व आए, हमसे कितने निकट, जबकि वो केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, करोड़ों साल में एक बार आते हैं, और वो हमारे जीवन से कितने नजदीक है। तो इस मौके का, इस भाग्य का पूरा पूरा लाभ हमें लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन में हमें भाग लेना चाहिए। नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चल के एक सेनापति भक्त होने वाले हैं जो सब जगह जाकर हर एक देश में इस महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करेंगे। तो वो सेनापति कौन है? भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अमेरिका में गए वो कई साल पहले और वहां से जाकर 1965 से केवल 12 साल में उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, केवल इस उद्देश्य से कि चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन जो कि कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए है, उसका प्रचार करने के लिए। बस इस संस्था का, इस मंदिर का एकमात्र उद्देश्य यही है। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी मोर नाम, कि दुनिया में जितने भी सारे गांव हैं, देश हैं, उन सब में मेरे पवित्र नामों का प्रचार होगा। इसका मतलब है कि ये चीज, ये भविष्यवाणी सच निकलने वाली है। अब देखते हैं कि केवल 12 सालों में इतने सारे देशों के इतने सारे भक्त कृष्ण भक्ति में आ गए हैं, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आ गए हैं। तो आगे चल के भी महाप्रभु की वाणी और सच्ची निकलेगी। एक दिन आएगा जब इस सारे विश्व में यह प्रमुख धर्म बन जाएगा। हर एक घर में गौर निताई की मूर्ति होगी, गली गली में गौर निताई हरे कृष्ण महामंत्र का भी उच्चारण होगा। ये दिन दूर नहीं है, हमारे जीते जी आए या न आए, ये तो होने वाला है। तो हमारे लिए क्या कर्तव्य है? हमारा जीवन धन्य होगा अगर केवल हम इस हरिनाम के संकीर्तन के आंदोलन में भाग लें, एक छोटे से हम एक निमित्त मात्र बन जाएं। इससे हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और इस प्रचार के कार्य में भी हम एक छोटे से यंत्र बन जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज चैतन्य महाप्रभु के जन्म दिवस के ऊपर हमें उनके चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी हरि नाम में वो रुचि प्रदान करें। हमारे हृदय में जो भी अनर्थ हैं, भौतिक संसार को भोग करने की भावनाएं हैं, वो नष्ट हो जाएं और हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए और हम उनके आंदोलन में भी एक छोटे से यंत्र बन जाएं। आज उनका जन्मदिवस है तो अवश्य वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, हम आपके आभारी हैं, क्योंकि भक्तों के बिना उत्सव उत्सव नहीं होता। तो आप सब ने इतनी बड़ी संख्या में भक्ति भाव से आकर यहां इस उत्सव की शोभा बढ़ाई है। बहुत सारे भक्तों ने बहुत सेवा की है, जैसे आप देखते हैं सुंदर सजावट है महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। कई भक्तों ने रसोई घर में सेवा की है, कई ने भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा की है, कई लोगों ने यहाँ पर मंदिर में सजावट की है और कई तरह की सेवा भक्तों ने की है। तो हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि उनकी सेवा के फलस्वरूप हम सब भी उत्सव का आनंद ले पा रहे हैं। इस वक्त मैं निवेदन करूंगा कि पूर्ण प्रज्ञ प्रभु दो शब्द हमको सुनाएं, हालांकि वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं लेकिन वो अंग्रेजी में बोलेंगे और थोड़े समय के लिए इसका अनुवाद करके हम आपको सुनाएंगे। हरे कृष्णा, इसके बाद में फिर आरती होगी, आरती के साथ साथ कीर्तन, उसके बाद महाप्रसाद। लेकिन कृपया याद रखिएगा, आरती के लिए जब आप खड़े होंगे तो क्योंकि अभी तक इमारत काफी नाजुक है तो हम